ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग सुनेंगे हरि कथा पांचवें स्कंद अध्याय 19। इस अध्याय का नाम है जम्बूद्वीप का वर्णन और श्लोक संख्या 25। प्राप्ता नृजाती तू इह जे च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृता न वै यत्तरेत न पुनर्भुवाय यत्तरेण पुनर्भवाय ते भूयो वना ओका वनौका इव यान्ति बन्धनम्। प्राप्तानृजातिं त्यजे च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्। प्राप्तानृजातिं त्यजे च जन्तवो ज्ञानक्रिया द्रव्यकलाप संवृता न वैयतेन्न अपुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्। प्राप्तानृजातिं त्यजे च जन्तवो ज्ञानक्रिया द्रव्यकलाप संवृताम् न वैयतेरन् अपुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्। माता जी जी ये सब हेलीकॉप्टर बंद कर दो सर, इधर चल रहा है। जोर से प्रसाद अभी है, जोर से बोलो। सब पंखा बंद करो, सब पंखा बंद करो, घर का भी रखो। प्राप्त जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, निर्जातिम मनुष्य समाज में जन्म, तू निश्चय ही इह इस भारत देश में जे वे लोग च भी जंतव जीव ज्ञान ज्ञान से क्रिया कर्म से द्रव्य पदार्थों के कलाप समूह से समृताम संपूर्ण रूपेण न नहीं वही निश्चय रूप से निश्चित रूप से यतरेण प्रयत्न अपुना भवाय अमर पद के लिए ते ऐसे व्यक्ति भूय पुनः बनौका वन में स्थित पशु पक्षियों के समान इव जैसा यान्ति जाते हैं बंधनम बंधन को। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भारतवर्ष भक्ति के लिए उपयुक्त देश तथा काल समुस्थित करता है, जिससे ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति हैं जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं, जिससे शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। तात्पर्य भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें श्रवण कीर्तन विष्णु वाले संकीर्तन यज्ञ को अथवा स्मरण अर्चन दास्य सख्यम तथा आत्मनिवेदन जैसी अन्य भक्ति विधियों को सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। भारत वर्ष में ही अनेक पवित्र स्थानों को देखने का अवसर प्राप्त है, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप तथा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान वृंदावन मुख्य है, जहां के अनेक शुद्ध भक्तों की एकमात्र अभिलाषा भक्ति है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा अनादितम। इस प्रकार से प्राणी भौतिक बंधनों से छूट जाता है। अन्य मार्ग तथा ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग उतने लाभप्रद नहीं है। पुण्य कार्यों से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और ज्ञान मीमांसा से ब्रह्मभूत हुआ जा सकता है, किंतु यह वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को पुनः नीचे आना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के धाम पहुंचने के लिए प्रयास करे, यान्ति मद्याजपि माम, अन्यथा मनुष्य जीवन तथा जंगली पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु तथा पक्षी भी स्वतंत्र होते हैं, किंतु निम्न योनि में जन्मने के कारण वे स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते। अतः भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को जो भी सुविधाएं प्रदत्त हैं उनका उपयोग करते हुए इसे प्रबुद्ध भक्त बनकर भगवान के धाम जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही विषय है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी देशवासियों को भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त है, किंतु उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की वैसी ही सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जिस किसी ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण किया है, उसे अपने आप को श्री कृष्ण का अंश मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेने के पश्चात समग्र विश्व में इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष का वर्णन चल रहा है। ये जो श्लोक है इसमें स्वर्ग के देवतागण भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 से लेकर के श्लोक संख्या 25 के बीच में भारतवर्ष का गुणगान ये देवतागण किए हैं। प्रथम श्लोक में वे लोग भारतवर्ष में जो लोग जन्म लिए हैं, जो मनुष्य हैं, उन लोगों पर वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि उन लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया था जिसके चलते ये लोग मनुष्य देह में भारतवर्ष में जन्म लिए, कि क्या उन पर भगवान का कोई स्पेशल कृपा हो गया था जिसके चलते वे लोग मनुष्य जन्म लिए, जो कि बड़ा ही सुंदर स्थिति है भगवान को प्राप्त करने का। ये देवता लोग प्रार्थना करते हैं, जो कि वो लोग भी एक दिन हम लोगों के समान थे और पुण्य कर्म कर करके स्वर्ग लोक को प्राप्त किए। ये तीन जो लोक हैं भूर भुव स्व, इसमें से जो भूलोक है वहां के प्राणी वो मनुष्य जाति या मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, स्वर्गलोक भोग योनि है, नरकादि में भी भोग योनि है, लेकिन यह पृथ्वी लोक उसे मनुष्य का देह जो है वो कर्म योनि है। तो ये लोग इस प्रकार से वर्णन किए, वे कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले पुण्य कर्म किया जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति तो हो गई, स्वर्ग का सुख प्राप्त है, लेकिन हमेशा डर रहता है छूटने का कि खत्म हो रहा है और उसी में हम लोग फंसे रहते हैं और भगवान नारायण का हम चिंतन नहीं कर पाते हैं, अपने को भी धिक्कारते हैं कि स्वर्ग सुख के चलते हम लोग भगवान को विस्मृत हो जाते हैं, भयवश चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन, जतो जीवे सुखम जीवे, सुख से जीना चाहते हैं और भगवान नारायण को भूल जाते हैं। तो अपने जीवन को भी वे कहते हैं कि क्षणभंगुर जीवन है, हालांकि मनुष्यों से बहुत ज्यादा जीवन है, फिर वे कहते हैं क्षणभंगुर है। ब्रह्मा के जीवन से भी तुलना करते हैं, अपने जीवन को धिकारते हैं ब्रह्मा जैसा लंबा आयु प्राप्त कर करके भी, ब्रह्मा के एक जीवन काल में एक दिन में 14 मनु होते हैं और ऐसे एक मनु के जीवन काल में एक युग होता है, चतुर्युग। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का जीवन की अवधि बहुत लंबी है, कहते क्या फायदा, वैसा लंबा जीवन प्राप्त करने से। उससे तो अच्छा है कि इस भारतवर्ष में 100 साल का मनुष्य देह प्राप्त करें और भगवत भक्ति करते हुए वैकुंठ को प्राप्त करें। फिर भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं, जो कि मैं लास्ट जब क्लास दिया था ट्यूजडे तो उस दिन बताया था कि स्वर्ग में किन किन वस्तुओं की कमी है, 6 वस्तुओं की कमी है। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में विद्यमान है गंगा आदि नदियां, भक्तों का संगति, भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान का प्रसाद, तीर्थस्थलियां, ये सब हमको भक्ति में सहयोग करने के लिए ये प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, इसका गुणगान किए। अब यह सब करने के बाद अब यहां पर इस श्लोक में कहते हैं प्राप्ता, जिन्होंने प्राप्त किया है, ये सब बातें जो पहले बताई गई है, क्या क्या प्राप्त किए हैं उसका वर्णन करें। प्राप्ता पहले वाला भी अब उसी को गिना रखते हैं। नृजाति 84 लाख जोनियां हैं, उस 84 लाख जोनियों में मनुष्य जोनी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही तो ब्रह्मांडे भरी अनंत जीव गौण 84 लक्ष जोनी ते करो ये भ्रमण, 84 लाख जोनियों में जीव भ्रमण करता है, लेकिन उस 84 लाख में से जो मनुष्य जोनी है बड़ा कम है। जलयान लक्षाणी अस्थावर लक्ष विंशति, जल में रहने वाले जलजा 9 लक्षाणी 9 लाख प्रकार के हैं, अस्थावर पेड़ पौधे इत्यादि 20 लाख प्रकार के हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े 11 लाख, रुद्र शंख 30 लाख प्रकार के पक्षियां हैं, ऐसे ऐसे बताते हुए कहते हैं कि मानव चतुष्लक्षण 4 लाख प्रकार के और मनुष्य हैं। तो क्लास में बहुत लोग फर्स्ट नहीं होते हैं, कुछ ही नहीं होते हैं, बड़ा रेयर होता है। वैसे ही मनुष्य जन्म प्राप्त करना बड़ा रेयर है, सभी शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरम। कर्भाजन मुनि, इन मुनियों से जब नव जोगिंद्रों से जब नव जोगिंद्र से मिले महाराज जनक, तो विदेहराज उन लोगों से कह रहे थे कि दुर्लभो मानुषो देहे, मनुष्य देह मैं समझता हूं कि सबसे दुर्लभ वस्तु संसार में देखो यह है तो वह है मनुष्य का देह, आजकल के लिए नहीं। जय श्री श्री राधारस बिहारी गौनिताय सताराम सम्मान की जय। आज के लिए सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है नाजीदास? अरे आप किस युग में चले गए हो, सही बताओ ना, ये आपके लिए ना, लेकिन लोगों के लिए लोग क्या समझते हैं, न बप्पा न मैया सबसे बड़े रुपया। आज के युग में सबसे बड़ी क्या है? रुपया सबसे दुर्लभ है। मनुष्य का देह तो बड़ा आसान है, किसी को मर्डर कर दो, कितना मर्डर हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, सबसे दुर्लभ वस्तु है आज के दिन। आप देख सकते हैं संस्कृति में कैसे चेंज हुआ है, भारतीय सभ्यता संस्कृति खत्म हो चुकी है। महाराज जनक जो विदेह राज हैं वे भी मनुष्य देह को श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो यही नाम क्षण भंगुरम। दुर्लभ मनुष्य का देह है लेकिन कैसा है? क्षण भंगुर है, क्षण भंगुरम। तत्रार भी दुर्लभम मन्ने, उसमें भी दुर्लभ मैं मानता हूं, और वह है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, साधु महात्माओं का दर्शन उनका संग सबसे बड़ा दुर्लभ बात है। तो ही कहते प्राप्त हो, जो प्राप्त कर लिया है क्या? निर्जातिम, मनुष्य का दें, नर का दें। तू इह, तू मतलब निश्चय ही, और इह मतलब इस भारत वर्ष में। जे च जंतवो, जो जीव जंतु, जीव जंतु मतलब जीव, हम सब लोग जीव हैं, पशु भी जीव है, पक्षी भी जीव है, जो जन्म लिया है वो जीव कहलाता है, जो जीव शुद्ध हो जाता है वो आत्मा कहलाता है। तो जो जन्म लिया है वो जीव है, कोई मनुष्य का जन्म लिया है, कोई पशु का जन्म लिया है। तो पशु जन्म के विषय में यहां पर देवतागण नहीं कह रहे हैं, किसके विषय में कहते हैं, नृजातिम, जो मनुष्य का जन्म लिया है। वो तो ठीक है, मनुष्य का जन्म ठीक है, लेकिन भगवान व्यवस्था भी कर दिए हैं उनके स्मृति के लिए। क्या क्या है, ज्ञान, क्रिया, द्रव्य, कलाप। यहां पर कलाप कहा गया, कलाप का मतलब होता है उपयोगी, करते हैं कार्यकलाप, कार्यकलाप करना है, कलाप का मतलब होता है उपयोगी। ये मनुष्य का देह उपयोगी है भगवान से जुड़ने के लिए, और भगवान से जोड़ाने के लिए उपयोगी वस्तुओं का भी भगवान व्यवस्था किए हैं। वह क्या है, ज्ञान, विशुद्ध कृष्ण भक्ति का ज्ञान। साधु महात्मा गण घूम घूम करके एक ज्ञान देते रहते हैं, बिना पैसा लिए, आजकल पैसा लेकर कहते हैं ना, वो तो कोई फर्क नहीं, पहले साधु लोग जैसे नाराज जी घूमते रहते हैं बिना पैसा लिए। ज्ञान का मतलब है भगवत ज्ञान, और जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्रिया यानी भगवत भक्ति वो भी, और भगवत भक्ति के लिए जो भी साधन है, मंदिर हो, महाप्रसाद हो, सब कुछ द्रव्य, ये द्रव्य सब कैसा है, समृता, भारतवर्ष भरा पड़ा हुआ है इन उपयोगी वस्तुओं से, समृताम भरा पड़ा हुआ है, कमी नहीं है, बहुत प्रचुर मात्रा में है, पूर्णतया है ये उपयोगी वस्तुएं। तो ये उपयोगी वस्तु है, भगवान के संबंधित सब कुछ ज्ञान यहां पर है। भारतवर्ष को देखा जाए, यदि एक कवि कहते हैं कि ये भारतवर्ष जो है समुद्र के पुत्र हैं, समुद्र से उत्पन्न है। पहले इस भारतवर्ष का कई एक नाम, आर्यावर्त, जब से कलि शुरू हुआ तब से, इतिहास जाता है भगवान कृष्ण के जन्म वहां तक, और आगे भी जाता है, लेकिन उस समय से बीसी शुरू हुआ है। बीसी मतलब भारतीय क्रोनोलॉजी, बीसी उसका फुल फॉर्म है, भारतीय क्रोनोलॉजी। वह भगवान कृष्ण के जन्म से ही शुरू हुआ, ऐसे वर्णन किया गया कि फरवरी 17 फरवरी को बीसी शुरू हुआ, 3000 कुछ 3038 शुरू हुआ। और ऐसे राजाओं ने राज करते 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 आए, जब विक्रमादित्य राजा हुए तब एडी शुरू हुआ, राइट, और जब बाद में ईसवी सन ईसा मसीह से शुरू हो गया। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति बीसी को, आज भी पंचांग में बीसी, जितना भी संस्कृत के पंचांग है उसमें बीसी जरूर आएगा, भारतीय समय सारणी बीसी। तो इसे आर्यावर्त कहा जाता है, जहां पर आर्यन लोग रहते थे। आर्यन लोगों का व्याख्या किया गया है कि हिमालय और समुद्र के बीच में जो खंड है वहां के निवासी आर्यन है, वो आर्यावर्त है। तो समुद्र देखिए नीचे रहेंगे पैर जैसा है, भारत का देखिए एकदम शरीर के समान है, नीचे पैर पतला, बीच में थोड़ा पेट और हाथ, तो ये पूरा पश्चिम और पूर्व कलकत्ता से लेकर के बंबई तक ये पेट और हाथ हो गया है, और ऊपर हिमालय, यह है भारत का लंबाई चौड़ाई। इतिहासों में भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा इसका भी वर्णन है। जब भी कोई ग्रेट आदमी होता है तो उसके नाम से कोई नाम, आजकल तो स्ट्रीट का नाम बदलते हैं, शिवाजी मार्ग, ए मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग है। पहले जो राजा होते थे उनके नाम से, एकराट, सम्राट लोगों के नाम से ये नाम पड़ता था। तो भारतवर्ष का नाम तीन राजाओं के नाम से पड़ा है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि मनु के संतान सातवें पीढ़ी जो थे वे थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, उनसे इसका नाम पड़ा भारत। उसके बाद अन्यत्र महाभारत इत्यादि में वर्णन किया गया है, इसको वैष्णव लोग इसको मानते हैं भरत पुत्र से भारत। महाभारत इत्यादि में वर्णन किया गया है कि शांतनु नंदन, भारत के नाम से इसका नाम पड़ा भारत। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम 14 साल तक वनवास गए थे तो कैकेयी नंदन भरत जी राज्य कर रहे थे और वे राज्य का विस्तार किए, तब से इसका नाम पड़ा भारत। एनीवे, सब मिलाकर के इसका नाम पड़ा भारत। तो पहले इसका नाम था आर्यावर्त, बाद में हुआ भारत, और उसके बाद कुछ समय के बाद हो गया इसका नाम हिंदुस्तान, उसके बाद हो गया इंडिया। अब पता नहीं आगे क्या होगा, यहां तक तो पहुंचे हैं। एनीवे, तो भारतवर्ष आर्यावर्त ए वैदिक नाम है। हिंदुस्तान भागवत में नहीं आया है कहीं पर, भारतवर्ष आया है, आर्यावर्त आया है, वेद पुराण इत्यादि में नहीं आया है। ये जो ईरानी लोग हैं, एक हिमालय है, बाद में सिंधु नदी आता है जो समुद्र में मिलता है, बाद में समुद्र है जैसे घिर करके बंगाल तक जाता है, तो सिंधु नदी के उस साइड में जो ईरानी लोग व्यापार करते थे, तो उनके डिक्शनरी में 100 शब्द हैं ही नहीं, या वो 100 प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो ह कहते हैं, 100 को ह कहते हैं, तो सिंधु को हिंदू कहने लगे, सिंधु नदी को हिंदू कहने लगे, और बाद में जो हिंदू नदी के इधर थे वे हिंदुस्तानी कहलाने लगे। जैसे इंडिया में जो भी बॉम्बे में राजस्थान का व्यक्ति आकर के बस गया है, लोग कहते हैं मणवारी है, राजस्थान का होना चाहिए बस मणवारी हो गया, ऐसा बात नहीं है, मणवार एक स्टेट है, मणवार एक कई एक स्टेट है राजस्थान में, जैसे मणवार एक स्टेट है, और मणवार से जो लोग निकले हैं वो कहलाते हैं मणवारी, लेकिन वो बड़े संपन्न है, इसलिए बंबई में चाहे कहीं पर भी जो राजस्थान से आया है वो क्या कहलाता है, मणवारी कहलाता है। वो मणवार का ना हो, वो झुंझुनू का हो, सीकर का हो, कहीं का हो, लेकिन चूंकि राजस्थान से आया है तो मणवारी कहलाने लगा। वैसे ही ये ईरानियन लोग इसका नाम रखे हिंदुस्तान। वैसे ही हिंदू, हिंदू शब्द कहीं नहीं आया है,
जैसे हिंदुस्तान नहीं आया है, वैसे गीता भागवत रामायण महाभारत कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है। मैं चैलेंज करता हूं कहीं पर कहां आया हुआ है। ये फॉरेन नेम है हिंदू। हम लोगों का धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। लेकिन क्या करें, हम लोग विदेशियों के गुलाम रहे हैं, गुलामी रहने का। ये हिंदू वर्ड भी गुलामी वर्ड है। किसका है? ईरानियन का गुलाम है। जैसे लोग आजकल चाय पीते हैं, बड़े अपने पफडप थे ना, चाय पीता हूं मैं, अभी चाय पियेंगे, ये भी गुलाम है। किसका गुलामी है? ब्रिटिशर लोगों का। उन्होंने भले ब्रिटिशर इंडिया छोड़ दिए, लेकिन आज भी इंडिया पर राज करते हैं। ब्रिटिश राज अभी भी इंडिया पर चल रहा है। सभी इंडियन के मन में ब्रिटिश राज है। चाय पीना, कॉफी पीना, ये पतलुंग पहनना, पैंट शर्ट पहनना, ये सब क्या है? ब्रिटिश राज। तो ये जो हिंदू शब्द है, ये ईरानियन नेम है। उसके बाद ग्रीक आए, और ग्रीक लोगों को ह कहने में तकलीफ हो रहा था। उनके डिक्शनरी में ह शब्द है ही नहीं, एच शब्द नहीं है उनके पास। तो हिंदुस्तान को इंदुस्तान कहना शुरू किए। इंदुस्तान ई, तो बाद में लोग समझे कि इंदुस्तान ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए उसको इंडिया कहना शुरू कर दिए। इंडियन, इंडियन हिंदुस्तान से इंदुस्तान बना, बाद में अपभ्रंश होते होते इंडियन बन गया, और यहां के रहने वाले इंडियन कहलाए। ये हिस्ट्री है। आजकल मैं वही सोच रहा था कि आजकल सब लोग साइंस को मानते हैं, हिस्ट्री कोई नहीं मानता है। हिस्ट्री को कहते हैं मैथोलॉजी है। एक महाभारत रामायण में जो कथाएं हैं उसको लोग कहते हैं मैथोलॉजी है। लेकिन पहले साइंस और आर्ट दो पहलू थे, बल्कि पहले आर्ट का ज्यादा वैल्यू था बजाय के साइंस का। आज साइंस का ज्यादा वैल्यू है। साइंस डिस्ट्रक्शन सिखाता है, जहां की आर्ट अट्रैक्शन सिखाता है। चाहे वो गाने का कला हो, चाहे वो नाचने का कला हो, चाहे एक दूसरे से संबोधित करने का कला हो। एक कला देखिए संस्कृति पहले का। पहले कोई काम कराना था तो वे लोग एक दूसरे को एड्रेस करते थे घर में, चाहे धोबी हो, यदि एज में बड़ा है तो चाचा लोग कहते थे, ताऊ जी कहते थे, चाहे कुम्हार हो, चाहे नाई हो। और बटर सिस्टम था, पैसा बीच में था ही नहीं। और साइंस का देन है पैसा, और एड्रेसिंग क्या करते हैं? मिस्टर एंड मिसेज कहते हैं, मिस्टर सच्चे सच ये करना है, मिस्टर कहते हैं। आजकल के बच्चे भी अपने बाप मां को मिस्टर मिस्ट्रेस कहते हैं, मिसेज कहते हैं। पहले ऐसा बात नहीं था। पहले जब किसी को भाई कहते हैं तो वो फीलिंग आता था, किसी को बहन कहते हैं तो फीलिंग आता है, जब किसी को मां कहते हैं, माता कहते हैं तो फीलिंग आता है, दादा कहते हैं, दादी कहते हैं। लोग गधा को भी बाप कहते थे, काम करना था ना गधा को, चल बाप चलो। बैल को भी बाप कहते थे, चलो भाई भाई चलो। क्या सुंदर अपना भारतवर्ष था, धिकार है, क्या हो गया? हिस्ट्री वास्तव में पढ़ा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हमारी सभ्यता संस्कृति थी और हम कहां चले गए। ये जो तीन बात है, ज्ञान, क्रिया, द्रव्य, कलाप, समृताम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत का धरोहर है। भारत में घर घर में ज्ञान था, आज भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। आज किसी से गांव में पूछो कि एरोप्लेन कैसे चलता है, लोग बताएंगे नहीं, उनको मालूम है हम क्या जानते हैं, जो बनाया वो जानता है। लेकिन भगवान के विषय में पूछो कि राम कौन है, कृष्ण क्या है, सब बताना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा परछाई रह गया है, असलियत नहीं है, तो शैडो रह गया है। लेकिन पहले ये ज्ञान था, पहले स्त्रियों को गुरु करने की जरूरत नहीं थी, पति साक्षात गुरु थे। पहले के बच्चे बाप मां सब शिक्षित थे, दादा ही शिक्षित थे, तो ज्ञान उपलब्ध था। साधु महात्मा फ्रीली जाते थे, घूमते रहते थे, जैसे कि ब्रज की गोपियां गोपी गीत में गुणगान की है ऐसे साधु महात्माओं को। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीणितम कल्म सापहम श्रवण कैसे श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कवि भिरीणितो भूरिदा जना भूवि गृणंती तो भूरिदा जना भूरिदा जना। घूमते रहते हैं साधु लोग। आजकल तो कभी कभी देखते हैं बेचारे अपने ये जैन मुनि बाबा लोग कमंडल लोग घूमते रहते हैं। पहले सब साधु ऐसे ही चलते थे, एरोप्लेन से नहीं कैसे भी नहीं, पैदल चलते, सब लोग घूमते रहते थे। नारद जी पहुंच जाएंगे कहीं पर, देवल असित व्यास देव पहुंच जाते थे। तो ज्ञान उपलब्ध था साधुओं की तरफ से, प्रकृति के तरफ से। जो भगवान विभूति योग में वर्णन किए हैं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, मैं पानी मिठास मैं हूं, लोग पानी पीकर के भगवान का अनुभव करते थे, नदियों के शीतल जल से भगवान को अनुभव करते थे, समस्त परिस्थितियों में भगवान को थैंक यू बोलते थे। ये वातावरण, नदियां, पर्वत भगवान को याद दिलाते थे। हमें याद है कि हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारी बुआ के गांव पहाड़ में है, हम लोग वहां जाते थे और जोर से बोलते थे राम राम, तो पहाड़ बोलता था राम राम। देखो पहाड़ भगवान का भगत है, प्रणाम करते थे पहाड़ को। आजकल तो पहाड़ नहीं, बिल्डिंग रह गया, तो राम राम बोलते हैं कृष्ण कृष्ण, कुछ पता नहीं चलेगा। तो पहले समस्त वस्तुएं कृष्ण भावना भावित को याद दिलाती थी। ज्ञानम, यही ज्ञान था। हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसे सुखी होऊंगा, ये ज्ञान प्राप्त करने गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे। तो ज्ञान, तो भगवत भक्ति का ज्ञान, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव ही सर्वत्र हैं, यह ज्ञान हमें मिलता था। क्रिया यानी भगवान के भक्ति संबंधी जो भी कार्यकलाप हैं वो मिलते थे भगवान के सेवा संबंधी, और द्रव्यम पत्रम पुष्पम फलम इत्यादि सब कुछ उपलब्ध है। कलाप जितनी उपयोगी वस्तुएं हैं, समृता पूर्णतया है, खोद खोद करके उसमें भरा हुआ है भक्ति के लिए। भारतवर्ष में सब चीज, यहां तक कि धूल भी ब्रज का रज, ब्रज रज देख करके अक्रूर जी में भक्ति उत्पन्न हो गया, ब्रज रज देख करके, जमुना जी को देख करके। एक आचार्य कहते हैं ज्ञान क्रिया द्रव्य जो है वो आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभूत, तेसाम समूह। ज्ञानम आदि दैवम, क्रिया अध्यात्म, द्रव्यम आधिभूतम, तेसा समूह समृताम पूर्णा, श्रवणादि श्रवेन्द्रिय पूर्ण इति हरिनाम श्रवण कीर्तनादि संभवेति पिति इति भाव। तो कहते हैं कि भजन करने के लिए जो साधन है ये सब प्रदान करते थे, जैसे ज्ञान, आधिदैविक ज्ञान, ज्ञान को आधिदैविक कहा गया है, यानी भगवान के संबंध में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान था। क्रिया अध्यात्म, यानी अन्य प्राणियों के द्वारा, नहीं सॉरी, अध्यात्म मतलब शारीरिक और मानसिक क्रिया। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों को भगवान के सेम लगाते हैं। और द्रव्य अधिभूतम, जो भगवान का भजन करते थे तो अधिभूतम यानी देवतागण, देवतागण प्रोवाइड करते थे या अन्य प्राणी से प्राप्त होता था ये वस्तुएं। तेषां समूह संभृताम पूर्णा श्रवणादि सर्वेन्द्रिय पूर्ण इति, कोई ज्यादा डिमांड नहीं था, इंद्रिय संतुष्ट थी अपने आप में, इसलिए लोगों के पास समय था। आज बोलते हैं हाउ टू किल टाइम, समय कैसे बर्बाद करें, लोग सोचते हैं हाउ टू किल टाइम, पहले समय नहीं था। सत्यम कीर्तयन्तु माम कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते हैं ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम, भरा पड़ा हुआ था, भरा पड़ा हुआ है आज के लिए कह रहे हैं। न वही यतरेन, यह मनुष्य देह प्राप्त कर करके भारत वर्ष में जन्म लेकर के जहां पर भक्ति के लिए सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, ये सब होने के बाद न वही यदि मनुष्य यतरेन अपुनर्भवायते, न अपुनर्भवाय, पुनर्भवाय मतलब जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर, और न अपुनर्भवाय मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने का। ये सब प्राप्त कर करके भी मनुष्य यदि भारतवासीय भारतीय यदि प्रयास नहीं करता है मुक्ति के लिए, तो यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। भूयो बनौका, बनौका का अर्थ होता है इव बने स्थिता ओका इति बनौका, ओका मतलब स्थित रहना और बना मतलब वन में, जलौकसा जल में स्थित वाले, अस्थलों का अस्थल पर स्थित रहने वाले। तो यहां पर कहा गया भूयो बनौका, जो वन में स्थित रहने वाले पशु पक्षी, आजकल तो मनुष्य भी हैं वहां पर रहते हैं, लेकिन पहले यहां पशु पक्षी के लिए आ गया है। उदाहरण दिया गया है कि कोई पक्षी बहेलिया के जाल में फंस गई, लेकिन सौभाग्यवश वह जाल से निकल गई, निकलने के बाद भी यदि उसकी आसक्ति वन में ही है, वन के मीठे फल को खाने में है और इसी पेड़ पर बार बार जाती है, तो चांस क्या है फिर वह फंसेगी बहेलिए के जाल में। यहां पर अपने पर हम लोग उतारते हैं, हम लोग उस पक्षी के समान हैं जो माया के जाल में फंस गए हैं, लेकिन भगवान व्यवस्था करके यहां पर ज्ञान क्रिया द्रव्य दे दिए हैं जिससे कि हम छूट जाएं, साधु महात्मा करके छुड़ा ले जाएं, लेकिन छूटने के बाद भी उस पक्षी के समान यदि हमारी आसक्ति बनी रहेगी इस संसार को भोगने के लिए, संसार के सुमधुर फल को खाने के लिए, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जाल में हम लोग निश्चय ही फंसेंगे। बहेलिया है फंसाने के लिए, दुर्गा देवी है, जो फल खाना नहीं चाहता है, जो भगवान का भजन करना चाहता है, कृष्ण प्रेम रूपी फल खाना चाहता है, उस पर बहेलिए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहां पर है, भूजो बनौका इव, मतलब भांति ठीक वैसे ही यांति बंधनम, बहेलिया जैसे उस पक्षी को जो लालची पक्षी है, जो पक्षी छूट गई थी भगवान की कृपा से, लेकिन उसका लालच था वो फल खाने के लिए, पुनः उसी पेड़ पर आ गई, तो बहेलिया का जाल था ही फंस गई। तो वैसे ही कभी कभी हम लोग भी साधु के संगति से, गुरु के कृपा से अब अपने पर हम लाते हैं, हम लोग कृष्ण भावना को प्राप्त कर लेते हैं। जो कृष्ण भावना के रास्ते पर चल दिया है वो बहेलिया के जाल से छूट गया है, लेकिन यदि वह पुनः मुड़ जाता है और देखने लगता है अरे बड़ा अच्छा है उधर, कहां हम जा रहे हैं, और फिर वो मीठा फल खाने के लिए मुड़ जाता है, तो माया जाल वहां पर है। कृष्ण भूली सही जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया तार झापटिया धरे, माया तुरंत पकड़ लेती है उसको जो भूल जाता है। हम सब लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है, आते हैं भक्त बनते हैं, अच्छा लगता है भक्ति करना, संसार के दुख से बड़े दुखी थे, यहां आते हैं फर्स्ट क्लास का प्रसाद मिलता है, ना आलू का दाम पता लगाना है, टमाटर का दाम पता लगाना है, बना बनाया प्रसाद मिलता है, कोई टेंशन नहीं, नाचने गाने के लिए भी आनंद नाचने गाने में होता है। आजकल भी लोग पार्टी करते हैं, वो पार्टी में क्या करते हैं, शर्म के मारे नाच तो पाते नहीं है तो शराब पीते हैं, और शराब पीकर तब नाच डुम 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 करते हुए नाचते हैं। हम लोगों के भी पार्टी होती है, वो करताल मृदंग क्या है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और हम लोगों का शराब है हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। ये ऐसा शराब है कि जिसको इसका नशा लग जाए संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं। शराबी को जब शराब का नशा लगे, हम पेपर में पढ़ते हैं कि शराबी था, उसकी पत्नी ने पैसा नहीं दिया, उसका गला काट दिया, पढ़ते हैं ना, बाप से मार करके पैसा ले लिया, मां को मार कर पैसा ले लिया, उसको आदत लग गई शराब का, उसके सामने और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ही हरे कृष्ण वाले शराबी को हरे कृष्ण के शराब का नशा लग जाए तो सनातन गोस्वामी कहते हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सुकृतं प्राणिनां जत, परममृत एकं जीवनं भूषणं मे। हे हरिनाम प्रभु, आपका जय हो जय हो जय हो, जयति जयति नाम आनंद रूपं मुरारे, हे आनंद देने वाले मुरारी, आप अपने नाम के रूप में आए हो, आपका जय हो। विरमित छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, ये शराबी कहते मैं छोड़ दूंगा सबको, मैं शराब चाहिए और कुछ नहीं, विरमित निज धर्म, मैं अपना धर्म त्याग दूंगा, ये शराबी कहता मैं अपना धर्म त्याग दूंगा, चाहे तुम बाप है चाहे मां है चाहे पत्नी है छोड़ो, तो ये भी शराबी कहता है विरमित निज धर्म सब छोड़ दूंगा, सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ। क्या क्या धर्म है, निज धर्म पूजा आदि यत्न, पूजा वूजा छोड़ दूंगा, काम ही नहीं करूंगा। शराबी पूजा करने जाता है क्या, कोई काम करता है दिन में बेड़ा शराब पीकर बैठा रहता है, तो वैसे ही हरे कृष्ण वाले शराबी दिन भर हरे कृष्ण का शराब पीकर के सोए रहेंगे तभी भगवान अगर खिलाएंगे, बहुत लोग कहते हैं हरे कृष्ण को करने से क्या होगा, क्या भगवान तुम्हारे मुंह में भोजन डालेंगे? जरूर डालेंगे, विश्वास हो तब। माधवेंद्र पुरीपाद क्या कर रहे थे? गिरिराज के तलहटी में बैठ करके केवल नाम चिंता कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठे थे, उन्हें आनंद आ रहा था भगवान के नाम में। लेकिन भगवान को परेशानी होने लगी, अरे हमारा बच्चा भी बिना खाए पिए बैठा हुआ है, तो भगवान दूध लेकर के आए मधुरेन्द्रपुरी के लिए। तो ऐसे ही यदि जो हरिनाम का श्राप पीने लगता है तो भगवान की को चिंता हो जाती है, तब उसे काम करने की जरूरत क्या है? प्रभुपाद जी बड़े प्राउडली इस बात कहते हैं कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमारा मंथली इनकम इतना है, हमारा कोई बच्चा फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता है, फिर भगवान व्यवस्था करते हैं। हिंदी हिंदी लेक्चर आप लोगों ने सुना है? प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे, हिंदी वो लेक्चर दे रहे थे, कह कि हमारे 100 मंदिर है, इसी भाषा में हमारे 100 मंदिर है, वहां पर इतने भक्त लोग हैं, एक बार नहीं तीन बार भोजन करते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं। मैं 40 रुपया लेकर गया, आज भगवान ने 40 करोड़ दे दिया, काम काम करने गया। तो बिरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम, सब कुछ छोड़ दूंगा प्रभु आपके लिए, हे नाम प्रभु। कथमपि सुकृदम प्राणी नाम जत, तो फिर ये फिलंथ्रोपिकल एक्टिविटी जो है, हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, किसी को भोजन कराओ, कीमत कहना ही क्या है इसका कीमत ही। नहीं ध्यान पूजा कथम अपि तो फिर क्या कहना है? सुकृत, सुकृत मतलब सुकृति कर्म, पायस एक्टिविटीज। कथम अपि सुकृतम प्राणी नाम जत, जो प्राणियों के लिए सुकृति काम किया था, तो कहना ही क्या है? परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में, हे हरिनाम प्रभु, हमारे जीवन के अलंकार, हमारे प्राण स्वरूप तो केवल आप ही हैं। ऐसे भाव से ये भक्त लोग हरिनाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जब ये नाम प्राप्त हो गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चिंतामणि नाम प्राप्त हो गया है, शालिग्राम से मूंगफली मत तोड़ो, ये नाम चिंतामणि को अपने पास संजो करके रखो। भौतिक वस्तुएं हमें बहुत टेम्पटेशन देगी, लेकिन मुड़कर उधर मत देखो, जिसको छोड़ दिए हो उसे मत सोचो। यदि उसमें फिर लग जाएंगे तो हमारी परिस्थिति वैसे ही होगी जैसे बनौका जंगली पक्षी के समान, जो बहेलिए के जाल से छूट गई थी, लेकिन फल मीठे मीठे फल के लालच में पुनः फंस गई। तो हम लोग संसारिक लोग स्त्री संग को मीठा फल मानते हैं, ज्यादा धन इकट्ठा करना इसको मीठा धन फल मानते हैं, नेम फेम ग्लोरीज इसको मीठा धन फल मानते हैं। ये भक्ति के लिए ये बाधक है, ये हमको जाल में फंसाने वाला वस्तु है। तो एक बार जो बुद्धिमान होकर के जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, हम सब लोग जो भी कृष्ण भावना को अपना लिए हैं, हम सब चतुर हैं जो कृष्ण भावना को अपनाए हैं, लेकिन पुनः हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए उस फल को देख करके, नेम फेम ग्लोरीज को, और पुनः उधर मुड़ जाए, नहीं तो हम लोगों की दशा वही बहेली की दशा हो जाएगी। तो संसार में सब लोग प्राय बनौकसा हैं, उन लोगों को छुड़ाने का धंधा हम लोगों का है। भक्तों के ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में ही कहते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जिस किसी ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण किया है उसे अपने आपको श्री कृष्ण का अंश मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेने के पश्चात समग्र विश्व में इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही विषय है कि लोगों में जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश दीजिए, फंसे हुए लोगों को छुड़ाइए, सब कुछ प्राप्त है। तो यहां पर टू कंक्लूड, इस श्लोक का भाव यह है कि देवतागण उन भारतीयों को जो मनुष्य का देह प्राप्त किए हैं, हम अभी भारत में मनुष्य बड़े कम रह गए हैं, सब पशु हो गए हैं, मनुष्य बड़े कम है और गवर्नमेंट तो ठान ली है कि एक भी मनुष्य भारत में नहीं रहना चाहिए, सब पशु हो जाने चाहिए। कहते हैं सेकुलर कंट्री, सेकुलर मतलब जहां धर्म ना हो, और जिसमें धर्म नहीं होता है पशु कहलाता है, धर्म विहीन पशु भी नाम। तो गवर्नमेंट तो ठान ली है कि एक भी मनुष्य नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हर किस्म वाला बन जाएगा, सबको पशु बना दो, कोई भेदभाव नहीं, पशुओं में कोई भेदभाव नहीं होता है, उनमें वर्णाश्रम सिस्टम नहीं होता है। वो भी अपने स्वार्थ के, मैं पिछले दिन कथा बता रहा था कि जैसे पशुओं में झुंड होता है और मनुष्यों में समूह होता है, समूह में परोपकार होता है और झुंड में स्वार्थ होता है। कुत्तों का झुंड चल रहा है लेकिन दूसरा कुत्ता दूसरे गांव का आ गया, मो करना शुरू कर देंगे, ये झुंड में चल रहे हैं कुत्ते लोग, दूसरे गांव कुत्ता आ गया भोंकना शुरू कर देंगे। उतना ही नहीं, लगता तो है कि कुत्ते बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब बड़े साथ में चल रहे हैं, दूसरे को भोंक रहे हैं, उनके पीछे एक सूखा हड्डी डाल दो वहां पर, आपस में झगड़ा करना शुरू कर देंगे, ये झुंड वाले। तो वैसे ही मनुष्य में झुंड हो गया है, समूह नहीं रह चुका है, समूह एक दूसरे को हेल्प करता है लेकिन झुंड केवल अपना स्वार्थ देखता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला काट सकते हैं। और ये कब होता है, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में आज मनुष्यों का समूह नहीं रह चुका है, पशुओं का झुंड हो गया है। भक्तों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि उन लोगों को मनुष्य बनाएं, पहले मनुष्य मतलब धर्म की प्रधानता हो तब वे मनुष्य कहलाएंगे। तो यहां पर देवतागण यही कह रहे हैं कि सब कुछ विद्यमान है, मनुष्य का देह है, उपयोगी उपदेश है, भगवान के संबंधित ज्ञान है, क्रिया वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, सब सब कैसे हैं, उपयोगी हैं, कलाप उपयोगी हैं, समृता कम नहीं है, प्रचुर मात्रा में है। ये सब प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई मुक्ति की तरफ अग्रसर नहीं, न अपुनर्भवाय, यदि मुक्ति की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है तो उसका पीटी सिचुएशन है, दयनीय स्थिति में, ठीक वैसे ही जैसे जो पक्षी छूट गई थी बहलिए के जाल से लेकिन फल के लोभ से पुनः उस वृक्ष पर आ गई और पुनः उस जाल में फंस गई, तो हम लोग उसमें न फंसे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? श्लोक समझ में आ गया ना? कोई प्रश्न है? भूख लग गई है सबको? चलो उधर ही।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म का मतलब क्या होता है?
धारेति इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके। कृष्ण भक्ति को हम धारण कर सकते हैं। देह जो है ये हमको दिया गया है, हम अपने इच्छा से धारण नहीं किए हैं, जो दिया है ले लेगा। तो आजकल के जितने देह हैं सब ये टेम्पररी हैं, इसलिए देह का जो धर्म है वह टेम्पररी है, इसलिए धर्म का परिभाषा ग्रंथ नहीं हो सकता है। और धर्म का भागवतम में वर्णन किया गया है वासुदेव परायण होना, ये धर्म है। भगवान का शरण ग्रहण करना ये धर्म है, सनातन धर्म। माइक।
हरे कृष्णा, आपने भारत के बारे में बताया कि महान है और देवी देवता भी यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों? यहाँ पे तो लोग भक्त में इतना रुचि नहीं रखते और विदेशी लोग भक्त बनते हैं, कि विदेश में तो ये सब नहीं है, तो ऐसा क्यों?
आजकल भारत में केवल ट्रक के पीछे लिखते हैं भारत देश महान है, बस उतना ही करते हैं। ट्रक के पीछे देखेंगे ना भारत देश महान है, वो अपने नहीं अपनाते विदेश में, क्योंकि हमारे भक्त लोग जाकर प्रभुपाद जाकर प्रचार किए कृष्ण भावना जंतव, यहां पर बताया गया ना जंतव, किस जंतु के लिए? नृजन्म, जो मनुष्य जन्म लिया है उसके लिए यह है। तो विदेशी हुए मनुष्य है ना, पशु तो नहीं, देखने पशु लगते हैं, मनुष्य लगते हैं ना, तो उनके लिए भी है। ज्ञान देने की जरूरत है, प्रभुपाद जी कृपा करके गए दिए, आज भक्त लोग दे रहे हैं इसलिए वे स्वीकार कर रहे हैं। भारत में भी जब हम भक्त बने थे तो 8-10 केवल भारतीय भक्त थे 70s में, आजकल देखो सब भारतीय, क्योंकि विदेशी चमड़ा दिखाई नहीं पड़ता है यहां पर, सब भारतीय। तो कृष्ण भावना दो, चाहे अमेरिका में जो, अफ्रीका में, चाइना में, इंडिया में, कहीं दो, कृष्ण भावना जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कृष्ण भावना। यदि देंगे कृष्ण भावना को तो लोग भक्त बनेंगे। और कोई प्रश्न? एनी कॉमेंट? ऑलराइट, बाद में आकर यहां मत पूछना, अभी पूछ लो, दूसरे को फायदा होगा, नहीं तो लोग बाद में अगर यहां पूछते हैं, अरे पूछ लो बाहर, थोड़ा फायदा होगा दूसरों को भी। यहां पर कुछ भी नहीं है कि अकेला हम पूछेंगे, सबके सामने पूछ लो।
हरे कृष्णा बाबू, तो जी इसी चैप्टर में वो जम्बू द्वीप का वगैरह वर्णन है ना, जम्बू द्वीप और सुमेरु पर्वत, तो उसका स्थान कहां पर है और उसके सामने हमारी पृथ्वी का क्या स्थान है, मीन्स एग्जैक्ट?
वो आगे वर्णन है तो उसको कथा आगे सुनेंगे, अभी सब बता देंगे आप। अब कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है और कॉलेज का डिग्री कोर्स पूछने लगे, क्या फायदा उससे? अभी जो जरूरत है वही सीख ली, जो श्लोक है इस पर ध्यान करो, भागवत के एक एक श्लोक, श्लोकार्ध आधा श्लोक भी जीवन को सफल कर सकता है।
प्रभु जी, लेकिन तब हम लेक्चर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो संडे टू संडे आते हैं।
आप भागवत पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर है भागवत, भागवत अगले
प्रभु जी
आगे के अध्याय में इसका वर्णन किया गया है।
नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने
प्रश्न करनी चाहिए जो कथा कही गई है उससे। मैं उसका उत्तर दे सकता हूं लेकिन मैं उचित नहीं समझता हूं अभी, सब चीज का टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस तीनों देखना पड़ता है उचित समय।
हरे कृष्ण महाराज,
हरे कृष्ण।
लोग धन के अटैचमेंट क्यों रखते हैं?
बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोग धन से अटैचमेंट क्यों रखते हैं? जब प्रकाश नहीं होता तो वहां पर क्या होता है? जब प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है? अंधकार होता है। तो वैसे ही जब कृष्ण की भक्ति नहीं होगी तो अंधकार होगा, और लोग अंधकार में ये जुगनू थोड़ा प्रकाश देता है ना, कृष्ण भक्ति से आनंद प्राप्त होगा, है ना? लोग चाहते हैं आनंद प्राप्त करना, मेन गोल है आनंद प्राप्त करना, जो कि कृष्ण भक्ति से प्राप्त होती है, लेकिन वो है नहीं, तो कहां देखते हैं आनंद? द्रव्यों में, वस्तुओं में। वो वस्तुओं कैसे प्राप्त हो सकती है? धन से। इसलिए लोग धन से आ सकते हैं। वो धन से आसक्त नहीं है, आनंद से आ सकते हैं, वो आनंद चाहते हैं। अब आनंद कई एक प्रकार का आनंद है। किसी को डेली बैंक बैलेंस देखना भी उसको आनंद देता है। मैं जानता हूं बॉम्बे के एक पॉलिटिशियन नहीं रहे, लंदन में हम लोगों का एक बार प्रॉब्लम था, हम लोग गए थे उनके पास सहायता के लिए, तो बड़े अच्छे हम लोगों से व्यवहार किए, कहे कि मैं हेल्प करूंगा लेकिन आप लोगों को 50,000 रुपया देना पड़ेगा। 95 की बात है। तो कहे ठीक है आप हेल्प कीजिए। तो हम लोगों को अपने घर का वो टूर करा रहे थे, तो बेसमेंट में ले गए। उस समय 500 रुपए का नया नया नोट आया था सब, तो गोनी में 500 रुपए का नोट भरा होता, चूहे काट रहे थे सब। इतना पैसा है, फिर 50,000 मांग रहे हम लोगों से। कहते हमको ये देख करके आनंद आता है, भले चूहे काटे, वो हवस हो जाती है लोगों को। क्या आजकल के जो पॉलिटिशियन में पैसा कमी है क्या? ना, पैसा कमी है। शरद पवार को कितना पैसा चाहिए जीने के लिए? पैसा कमी नहीं किसी पॉलिटिशियन को, हवस है उनका, आनंद उससे है। किसी का आनंद स्त्रियों में है, किसी का आनंद कुछ में है, तो आनंद का डेफिनेशन है। लेकिन एक ही आनंद है, और वह है कृष्णानंद, सच्चिदानंद। वो आनंद सबके लिए समान है। यदि वह आनंद मिले सब लोग कंटेंट रहेंगे, फिर अलग अलग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन संसार में अलग अलग चाहिए, तो पैसा चाहिए क्योंकि लोग आनंद चाहते हैं, तो आनंद के लिए पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं। बस वो रात में है, जुगनू से देख रहे हैं रास्ता, आनंद को खोज रहे हैं जुगनू से। आप कुछ कहना चाहते हो? कह नहीं रहे हो। माइक भाई ठीक है, तुम बोलना।
प्रभु जी, अभी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज आए थे कुछ दिन पहले, वो बता रहे थे जैसे अभी किसी को पूछते हैं केम छो, तो वो बोलते हैं मजा वहां। तो असल में ये गलत है, क्योंकि शरीर कभी मजा नहीं।
मैं बोलता हूं सजा माचू। केम छो सजा माचू, मजा मत बोलो सजा मा।
महाराज बोले कि शरीर को सुख मिलता है, मन को शांति, और आनंद तो केवल आत्मा को मिलता है, जो कि शुद्ध कृष्ण भक्ति से है। ये महाराज बोल रहे थे। धन्यवाद।
तो इसीलिए कभी मजा मत बोलो सजा मा बोलो।
आपका जवाब बहुत अच्छा था, पर आनंद जो आता है, किसी को आपका लेक्चर सुनने में आनंद होता है, बहुत लोग को आपके लेक्चर सुनने में आनंद नहीं मिलता है। तो आपके लेक्चर सुनने में जिसको आनंद मिलता है, वो ईश्वर की और वैष्णव की कृपा से मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। सब लोग को जो आनंद जो हमें मिलता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास वो कृपा नहीं है।
बिल्कुल बात सही है। वैष्णव के कृपा से ही भगवान कृपा करते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान के गुणानुवाद में आनंद की अनुभूति होती है, नहीं तो नींद आएगा कथा में, आनंद की अनुभूति नहीं होगी बिल्कुल। फिर कृष्ण के कृपा से ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। सच्चिदानंद वही है ना, आनंद के रसो वही सह वेद कहता है, रस के आगार हैं कृष्ण, आनंद के आगार हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, आप धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं लोग, प्रसाद है, चिंता मत करो।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे
प्रभु जी, भारतवर्ष जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जो भारत है या पूरा विश्व भारत वर्ष था पहले, तो उसका कैसे?
इस भूमंडल को ही भारतवर्ष कहा जाता था पहले
जी,
पूरे भूमंडल को। अभी तो भारतवर्ष
बहुत छोटा हो गया है,
अभी पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अभी पता नहीं और कौन जाएगा। पूरे भूमंडल को भारतवर्ष कहा जाता है। वो जो सम्राट लोग होते थे, पूरे पृथ्वी का राजा थे वे लोग, पृथ्वीपति थे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि सारा संसार नेम फ्रेम और ग्लोरीज में फंस जाता है। तो वास्तव में ऐसा देखा जाता है भक्ति में आने के बाद भक्त भी कभी कभी इसमें फंस जाते हैं, तो कैसे इससे बचा जा सकता है?
देखो, भक्ति में आने पर माया देवी अपना प्रभाव दिखाएगी, वो टेस्ट करती है, वो टेस्ट करती है कि सही में कृष्ण का भजन करना चाहते हैं केवल दिखाने के लिए करते हैं। माया देवी टेस्ट करती है, और जो व्यक्ति नेम फेम ग्लोरी में गया हो गया, रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, माली होया करो से ही बीज आरोपण, श्रवणो कीर्तनो जले करो सिंचन। जब बीज का आरोपण हो गया तो श्रवण और कीर्तन रूपी जल से इसका सिंचन करना चाहिए। जब पौधा उत्पन्न आगे बढ़ता है, जब बढ़ने लगता है, तो साथ साथ विभिन्न प्रकार के घास जमने लगते हैं पौधे के साथ में। तो महाप्रभु कहते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपसखा गौण, लाभ एडोरेशन पूजा वर्शिप प्रतिष्ठा फेम नेम फेम ग्लोरी, ये सब भक्ति के उपसखा हैं। जब भजन करोगे वो अपने आप आएगा, बिना बुलाए आएगा। कल आप चोरी डकैती करना शुरू कर दो, करना मत, अभी करना शुरू कर दो, लोग गाली देंगे, भले सामने न देंगे पीछे गाली देंगे। लेकिन यदि आप भक्त बन जाओ, माला लेकर जप करना शुरू करो, हजार लोग आएंगे। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु आत्मा रामस्य मुनिय का व्याख्या करते हुए एक कथा बताए हैं, मृगारी का। मृगारी पापी था, लेकिन नारद मुनि की कृपा से सब कुछ त्याग करके भजन करने चला गया। क्या हुआ, नेक्स्ट से पूरा गांव वाले आने लगे, मृगारी भक्त बन गया देखने के लिए। पहले साधुओं का इतना सम्मान था, तो नेम फेम ग्लोरी आता है, लेकिन भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क नहीं रहेंगे तो उस पक्षी के समान है जो पुनः उस जाल में फंसने वाली है। ये सांसारिक वस्तु नहीं, स्पिरिचुअल वस्तु भी कभी कभी हमको जाल में फंसा सकती है। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसलिए भक्तों को हमेशा अवेक रहना चाहिए, सो मत जाना कभी भी स्पिरिचुअली। हमें स्वयं देखना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं इस संबंध में एक कथा बताया करता हूं, मुझे संक्षिप्त में कह देता हूं कि एक बार एक सेठ जी जा रहे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। उनके हाथ में एक सूटकेस था, उसमें बहुत रुपया पैसा हीरे जवाहरात का गहना सब भरा पड़ा था। जब सेठ जी सीढ़ी चढ़ रहे थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, गिर पड़े। उस वो जो गहना का बक्सा था, उनका जो बैग था, वो खुल गया, तो रुपया पैसा गहना सब पड़ा हुआ था, बड़ा कीमती था। वॉचमैन देखा, फटाफट भाग करके आया, पहले उस सूटकेस को बंद किया और अपने रूम में रख दिया। बाद में सेठ जी को लेकर गया अस्पताल में, दवाओं को कराया, सेठ जी ठीक हो गए। तो बाद में उनके पास वो बैग लेकर के गया, कहा सेठ जी आप जब मंदिर में आ रहे चढ़ रहे थे, आपको हार्ट अटैक हो गया और आपका बक्स गिर गया था, सब खुला पड़ा था रुपया पैसा गहना, आप गिन लीजिए जितना था उतना है ना, मैं बंद करके रख दिया था। सेठ जी का दिल द्रवित हो गया, गरीब बाप रे बाप, कितना बड़ा ये पुण्य आत्मा है, मैं तो बेहोश पड़ा था, चाहता था लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने ला करके हमें दिया। तब सेठ जी उसको अपना खजांची बना लिया, ट्रेजरर बना लिए, क्या चलो अब तुम वॉचमैन काम मत करो, चलो ट्रेजरर बन जाओ, ट्रेजरर बना लिए। एक दिन सेठ जी कहीं पर जाना था, अब उसको बंगलो देकर रखे थे, गाड़ी देकर रखे थे, सब कुछ सुख सुविधा दिए थे। बहुत देर हो गया नहीं आया, सेठ जी से क्या हो गया, आया नहीं, तबीयत पानी ठीक है ना। सेठ जी गए देखने के लिए, अब सेठ जी आ रहे हैं, दरवान लोग थे, सब थे। अब सेठ जी आ गए, कौन रोकने वाला है, सब सीधे चले गए। तो उस रूम में गए जहां पर वह था, तो क्या देखते हैं सेठ जी कि वही खाकी का पैंट और शर्ट पहन कर कहता है, इधर नहीं उधर चलो, इधर नहीं उधर करो, वही बात कर रहा था। सेठ जी देखते रहे, बाद में कहते हैं कि ट्रेजरर साहब क्या हो गया आपको, सब ठीक है ना। अब सेठ जी को राम राम, राम सेठ जी राम राम किया। सेठ जी ने कहा ये क्या हुआ कि ये क्या भेष बनाए हो, ये क्या पहन लिया ऐसा, अरे पता नहीं हमको जाना है। तो उसने कहा कि सेठ जी ये जितना भी दिखावा है ना, ये घर महल गाड़ी कपड़ा, ये सब आपका दिया हुआ है, ये आपका है, लेकिन जो मैं पाना हूं ना वो मेरा है। इसलिए मैं कभी कभी इसको पहनता हूं ताकि मैं अपने को भूल ना जाऊं कि मैं कौन हूं। वो व्यक्ति को ज्ञान था। वैसे ही हम लोगों को जो दिया यहां ना, जो लाल कपड़ा पहन लिए ब्रह्मचारी लोग, वो गुरु का दिया हुआ है, सोसाइटी ने दिया है हम लोगों को। जो भी आज नेम फेम ग्लोरी है सोसाइटी का है। हम लोगों को अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए, और हमारा अस्तित्व है कि हम कृष्ण के दास हैं। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस बात को दिन में 3 बार तो याद जरूर करना चाहिए, दिन भर कर तो अच्छा है कि मैं कृष्ण का दास हूं। दास कोई नहीं बनना चाहता, मालिक बनना चाहते हैं, भगवान से कंपटीशन है। भगत बनकर भी मालिक बनना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं इस्कान का दास हूं, मैं प्रभुपाद जी का दास हूं, और तब नेम फेम ग्लोरी परेशान नहीं करेगी, तब पास हो जाओगे, माया तंग नहीं करेगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? ऑल राइट, अच्छा ओके, लाओ भाई इनको प्रश्न है। हमारे परचेज डिपार्टमेंट को हरिनाम परचेज जरूर करना, और मत कुछ परचेज करना।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने।
हरे कृष्ण।
इसमें इस वर्ष में जो वनौका का अर्थ आपने बताया, जो वन में रहता है उसे वनौका कहा जाता है।
ओ का मतलब स्थित होना,
स्थित होना। तो लेकिन अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद में प्रभुपाद जी से स्पेसिफिकली बर्ड या पक्षी कहते हैं, तो इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि
जो वन में जो स्थित रहते हैं पक्षी या पशु से, उनको बनौका, हनुमान जी अपने कहते हैं बनौ कसा, हम बनवासी हैं। इसके पहले श्लोक में कहते हैं ना, जब किम पुरुष वर्ष में, तो अगर बनौ कसा, हम बनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं। ये हिंदुस्तान, वह स्थान जहां हिंदू, पाकिस्तान है, उसे बनौ कसा, स्थिति का जो वहां स्थित रहता है, तो बनौ कसा। ओ का मतलब स्थित होना, बन ओ का भी व्याख्या किया गया है, लेकिन वो बड़ा अ उ क उसमें है, क्या प्रत क प्रत में उ प्रत्यय लगा है। खैर हो तो विष्णु हमारा बताएगा कहीं इधर है, विष्णु है चला गया है, संस्कृत के शब्दों का अलग अलग सब शब्द बने हैं किसी न किसी कारण से, इसका बड़ा गुड़ मीनिंग होता है। ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराशियम भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।